بعد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. لاسٹ تو ہے ہماری سیرت الصحابہ و خلفائے راشدین کی. تو رمضان المبارک کے گیپ کے بعد پچھلے ہفتے اگرچہ کہ ہم نے شروع تو کر لی تھی کلاس اوبر شہر سے کری تھی، لیکن اس میں آگے کی کوئی بات کرنے کے بجائے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کی اچھی خاصی، اس میں کچھ یادداشتیں آپ کے سامنے ریپیٹ کری تھیں، دہرائی تھیں، اور آخر میں ہم نے اس میں کیا بتایا تھا وہ کسی کو اگر یاد ہو. زیادہ تر حضرات جہاں پر جو یہاں پر ہیں وہ آن لائن تھے، تو چند ایک تھے جو کہ وہاں پہ داؤد بھائی موجود تھے آن سائٹ، لیکن اور کوئی جو ہے وہ آن سائٹ نہیں تھا. پتہ نہیں آن لائن کون سن رہا تھا، لیکن کسی کو یاد ہے آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے یا یہاں پہ موجود اسٹوڈنٹس میں سے کہ آخری بات ہم نے اس میں کیا کری تھی پچھلے ہفتے کی کلاس میں؟ کل رات جو ہے وہ بہت دیر تک لوگ جاگے ہیں ولیمے کی وجہ سے، اس وقت جمائیاں آ رہی ہیں محمد صاحب تو فجر پڑ کے ہی سوئے تھے اس سے جی. اینی ون اباؤٹ ہاؤ بگ از جنہ، آخری بات تو وہ نہیں تھی، وہ معراج کے واقعے کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو جنت کتنی بڑی ہے وہ سب ہوا تھا، لیکن آخری بات یہ نہیں تھی. پچھلی کلاس میں آخری بات کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا تھا ہمارے اکابرین میں سے، کے واقعات میں سے جی. اچھا جی، ماشاء اللہ ان کو یاد ہے اور نام بھی یاد ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک دفعہ لاہور میں کوئی قریشی صاحب تھے، انہوں نے اپنے گھر پہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت پہ بلایا، اور اس دعوت میں انہوں نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ عہدیداروں کو، یعنی جو بڑے ڈگنیٹریز ہوتے ہیں، سیاستدان، پولیٹیشنز اور ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس طرح کے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا. تو انہوں نے پھر انٹروڈیوس کروایا کہ یہ فلانے ڈاکٹر ہیں، یہ فلانے انجینئر ہیں، یہ فلانے وزیر ہیں، یہ فلانے ہیں. تو مولانا یوسف صاحب جو ہیں وہ پیچ و تاب کھاتے رہے اندر ہی اندر کہ یہ کیا کر رہا ہے تو خاموشی سے سنتے رہے. اور جب بات ان کی ختم ہوئی تو پھر وہ جب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا لے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ سارے ٹائٹل جی عہدے وغیرہ نا یہ میرے لیے تو مجھے تو ان سے مناسبت ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ساری چیزیں کیا ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ فلانا شخص کیا ہے، ڈونکی ہے، فلانا شخص جو ہے وہ پی آئی جی ہے اور فلانا جو ہے وہ ڈی او جی ہے، تو یہ مجھے زیادہ سمجھ میں آ جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہم نے حضرت جی سے بھی سنا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب کشف عطا فرماتا ہے نا تو یہ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو انسانوں کی روحانی حیثیت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو روحانی دنیا میں جیسے ہمارے اندر کے حالات ہوتے ہیں نا تو ویسی پھر ہماری شکل بن جاتی ہے روحانی دنیا کے اندر، تو کشف والے حضرات کو پھر وہ شکل نظر آتی ہے. تو جس کے اندر بہت ہی زیادہ ہرس ہوتی ہے اگر تو وہ اس کی شکل جو ہوتی ہے نا روحانی دنیا میں ڈی او جی والی شکل ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے، اور جس کے اندر فلانی والی روحانی بیماری ہوتی ہے تو اس کی شکل ایسی بن جاتی ہے، کسی کی شکل ایسی بن جاتی ہے. تو بہرحال حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی کوئی ایسی کیفیت آئی ہوئی تھی اس وقت، تو انہوں نے ایسے فرمایا کہ بھئی یہ تو مسلمان کی انٹروڈکشنز نہیں ہے، مسلمان کی انٹروڈکشنز تو وہ ہونی چاہیے جو کہ صحابہ کی انٹروڈکشنز ہوا کرتی تھیں، اور صحابہ کی کیا ہوتی تھیں کہ بھئی یہ فلاں بدری صحابی ہیں، ये जो है वो बैत उकबा के अंदर शामिल थे, ये जो थे इन्होंने हिजरत मदीना मुनव्वरा करी थी, ये इन्होंने दीन की ये वाली खिदमत करी थी, इन्होंने दीन की फलानी वाली खिदमत करी थी। तो भाई ये होनी चाहिए मुसलमान की इंट्रोडक्शन, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो तो गुजारे की चीजें हैं, खाने पीने के लिए तो वो भी अच्छे से करना होता है। हराम रिस्क तो नहीं खा सकते कि बगैर काम काज किए जो है वो आप तनख्वाह लेकर के जो है वो खाना खा रहे हैं, नहीं, मेहनत करके काम करना है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप जो है वो फैक्ट्री चला रहे हो, चाहे आप जो है बिजनेस कर रहे हो, सब में मेहनत करनी है। लेकिन दैट शुड नॉट बी आवर इंट्रोडक्शन, दैट शुड नॉट बी द वे वी आर नोन अमंग पीपल, ठीक है। तो ये हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस तरह से फरमाया, गोया के उन्होंने कुरैशी साहब को अच्छी खासी डांट पिला दी इस बात के ऊपर कि आप दुनियावी ओहदों से क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, तो सवाल क्या पैदा होता है पहले आप यही बता दें तो ज्यादा अच्छा है, क्या सवाल पैदा होता है। तालिब इल्म जो गौर से बात सुनता है और सोचता है कि भाई टीचर क्या कह रहा है ना, तो उसके जहन में फिर सवाल पैदा होता है जो कि इस बात की इंडिकेशन होती है कि यस ही और शी इज एक्चुअली पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो सवाल पैदा होना जो है ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको टीचर से पूछ लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। उनका क्या रिएक्शन हुआ ये सवाल पैदा हो, ये तो एक स्टोरी टाइप ऑफ सवाल हो गया कि फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया। हम उस वाले सवाल की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं एक जहन में, एक्चुअली इसके लिए प्रॉपर वर्ड है ना वो है इश्काल पैदा होता है, ठीक है। इश्काल मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर कि भाई अच्छा फिर अगर ऐसा है तो फिर वैसा क्यों, इसको इश्काल कहते हैं, ठीक है। तो तालिब इल्म के दिल में इश्काल पैदा होता है कि आपने फिर दूसरे नंबर पे हाथ उठाया था।
तो फिर भी
ये इश्काल का तो हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, ठीक है, तो हम तो वो इश्काल पूछ रहे हैं जो कि जिसका जवाब अभी नहीं मिला है। इसका जवाब तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि भाई हराम को थोड़ी रिस्क खाना है, ठीक है, तो दुनियावी तालीम हासिल करनी है और अच्छे से मेहनत से काम करना है और मेहनत से जो है वो कमाना है और फिर हलाल को खाना है, तो ये तो इश्काल ऑलरेडी आंसर हो चुका है। कोई नया इश्काल बताए अंकल से पहले, अगर बच्चे बता दें तो ज्यादा अच्छा है। मोमिन की पहचान क्या होनी चाहिए, ये भी इश्काल नहीं है, ये एक प्योर सिंपल सवाल है कि फिर मोमिन की पहचान क्या होनी चाहिए, तो उसका भी जवाब ऑलरेडी हो चुका है कि मोमिन की पहचान इस्लाम से होनी चाहिए कि उसने इस्लाम के लिए क्या किया, ठीक है, तो ये इश्काल नहीं है। फरहान साहब
ठीक है, अच्छी बात
दुनियावी ओहदे बताना क्या ये अच्छी बात नहीं है? हाँ, ये वाकई एक इश्काल है, और ये इश्काल भी क्यों पैदा हुआ, क्योंकि और कौन होता है, आप हाथ उठा रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, ये बोलो।
है।
दुनियावी लोगों को बुरा भला कहना कि ये डीओजी हैं, ये पीआईजी हैं, ये फलाने हैं, तो इनसे उनके दिल में बदगुमानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, पते की बात यह है कि ज़करिया रहमतुल्लाह ने आगे ये भी लिखा है कि जितने लोगों को उन्होंने इस तरह से कहा था ना कि ये इनको ये कह देते, ये कह देते ज्यादा अच्छा होता, तो उनके ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर हुआ और जितनी बात के मजालिस थी ना उन सब में वो लोग आना शुरू हो गए और लोगों को भी लाना शुरू हो गए, ठीक है। ये नहीं हुआ कि सारे भाग गए और बदगुमान हो गए और दीन से दूर हो गए, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, खैर। लेकिन हजरत ज़करिया रहमतुल्लाह ने आगे ये भी लिखा है कि दूसरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि कोई शख्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस तरह से, तो अब जो है वो आप भी, मैं भी मौलाना यूसुफ हूँ मैं भी डांटूंगा, मैं भी उनको कहूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक खास कैफियत आई हुई थी, उन्होंने इसमें आकर के जो बात कही थी, तो साथ साथ उनका रूहानियत भी इसमें शामिल थी। हमें इस तरह की ट्राइयां नहीं मारनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात तो उन्होंने क्लियर भी कर दी थी। कोई और इश्काल, द क्वेश्चन डाउट इज वाई वॉज ही सो रूड? नो ही वॉज नॉट रूड, मे बी यू आर बींग रूड राइट, क्योंकि आपके पास समझ में नहीं आ रही और आप जो है वो अल्लाह के दोस्तों को रूड कह रहे हैं, तो दिस इज अपॉन यू, ठीक है, ये उनके ऊपर रूडनेस नहीं था, ठीक है। चलें, कोई और? चले आप अंकल से पूछना पड़ेगा, पहले आरिफ अंकल ने हाथ उठाया था।
जाते हैं कर रहे हैं, भी होगा उसके बाद
जी
भी ऐसा नहीं कर।
एब्सोल्यूटली 100% राइट। ठीक है ना, ये इश्काल पैदा होता है, ठीक है ना, और ये इश्काल जो है ना, इसको रिजॉल्व करना, इसको क्लियर करना हमारे लिए अल्टीमेटली जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो या तो आप हजरत जी के बारे में बदगुमान हो जाएंगे, या आप मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह, वो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बदगुमान हो जाएंगे, या आप मेरे बारे में बदगुमान हो जाएंगे कि ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी तीनों में से किसी एक के बारे में तो आपको शैतान बदगुमान करके छोड़ेगा। ठीक है, इस वजह से इस इश्काल को क्लियर करना जो है वो एब्सोल्यूटली जरूरी है। तो दाऊद भाई क्लियर करेंगे, बताइए। सही, तो ये जैसे उन्होंने कहा कि लोगों को जो है ना ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। ठीक है, दुनियावी बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, उनके नज़दीक जो है ना वो दुनियावी डिग्रीज और दुनियावी माल और दौलत और दुनियावी पोजिशन जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं। तो हजरत जी जो ये काम कर रहे होते हैं, या इवन बहुत सारे दूसरे अकाबरीन ये काम कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये साइंटिस्ट साहब हैं, ये फाइनेंशियल एडवाइजर साहब हैं, ये जो है वो अमरीका से आए हैं, ये जो है वो बरतानिया से आए हैं, लेकिन साथ साथ जो है देखे दीन के ऊपर भी अमल कर रहे हैं, और सुन्नत पे भी, उन्होंने सुन्नत भी अपने ऊपर करी है, सुन्नत वाली जिंदगी इख्तियार करी है, वगैरह वगैरह। तो हजरत जी का मकसद जो होता है ना वो खाली ये होता है कि जिन लोगों के नजदीक इन बातों की अहमियत है उनको ये बताना कि भाई ऐसे बैकग्राउंड के बावजूद आप दीन के ऊपर आ सकते हैं, बावजूद आप जो है वो दीन पे अमल कर सकते हैं। जब इन लोगों ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? वरना शैतान कहता है कि भाई तुम तो दुनियादार हो, तुम्हारा दीन से क्या काम, तुम्हारा दीन से क्या वास्ता, तुम तो नहीं कर सकते दीन पे अमल, या तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं दीन की। तो भाई जब इतने सारे दूसरे लोग प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं तो अब आपके लिए तो काम और आसान हो गया ना, तो अब आप भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहाना होता है कि लोगों को दीन की तरफ लाना। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल एक और भी है, वो ये है जो कि हम कई दफा अपनी क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, कि जब हम मिसाली मर्द और मिसाली माँ हजरत जी के बयानात क्लासेस में पढ़ा रहे थे, तो उसमें उन बयानात में हजरत जी ने क्या किया था कि हजरत जी वुड कोट रिसर्चेस फ्रॉम कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो है वो MIT यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस कोट कर रहे थे, कि MIT की ये यूनिवर्सिटी ये रिसर्च थी और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही। तो उसमें हमने बात समझाया था, ये बात समझाई थी कि इसका मतलब ये नहीं था कि हजरत जी के लिए जो है वो MIT और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज की रिसर्च जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बातों से ज्यादा अहमियत रखती है, ऐसा हरगिज नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, वरना तो फिर इंसान मुसलमान ही क्या फिर? ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की बात काफी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर आप कोट क्यों क्यों कर रहे हैं, आप हार्वर्ड की रिसर्च को क्यों कोट कर रहे हैं? क्या जरूरत है हार्वर्ड की रिसर्च को कोट करने की, जब नबी अलैहिस्सलाम की बात जो है वो काफी है? ठीक है, तो फिर इसका जवाब क्या दिया था क्लास के अंदर, ये बात भी समझाई थी, क्या जवाब था अगर किसी को याद हो? एक मिनट देखो। जी
बात
ठीक है, वो एक बड़ा सिंपल सा सादा सा जुमला हम कहते हैं कि भाई तुम मेरी नहीं मानते ना मानो, या तुम मुझे नहीं मानते ना मानो, जिनको तुम मानते हो उनकी तो मान लो ना, राइट? तुम मुझे कुछ नहीं मानते या तुम दीन को कुछ नहीं मानते तो इस वजह से मेरी बात भी नहीं मानते, लेकिन तुम जिनको मानते हो उनकी तो मान लो ना, वो भी तो वही बातें कह रहे हैं जो कि कुरान मजीद में है, वो भी तो वही बातें कह रहे हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। ठीक है, तो उनकी तो मान लो, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन उनका तो बन, राइट? अल्लामा इकबाल भी कह के गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उनका की बजाय कहा कि अपना तो बन, एक ही बात है वैसे। ठीक है जी,
तो इसका जो है वो
हाँ, तो कॉमन कॉमनली अप्रिशिएटेड जो चीजें होती हैं ना, उनके जरिए से आप अगले बंदे को बात समझाते हैं। हाँ, तो ये तो तरीका है दावत का। अच्छा, आखिरी बात ये कि मौलाना यूसुफ ने ये बात जो कही, तो उनका जो मकसद था वो था जिस मकसद से हमने आपके सामने ये बात रखी है। ठीक है, हम ये उन पे तनकीद नहीं कर रहे हैं कि जो के किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट के तौर पे, हम उन पे को थोड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो तो जो ये काम करते हैं, वो अपनी उनकी नीयत तो यही होती है कि लोग जहन्नुम से बच जाएं, दीन के रास्ते पर आ जाएं, उनका भी भला हो जाए। वो तो इस नीयत से काम कर रहे होते हैं जैसे हजरत ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जो है वो कुरैशी साहब ने ये काम इसी नीयत से ही किया था। कुरैशी साहब भी कोई गलत नीयत से ये काम नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, लेकिन हम आपके सामने ये बात इसलिए बयान कर रहे हैं कि हम अपने आप को ऐसे बनाएं कि हमारी पहचान दुनिया ना हो बल्कि हमारी पहचान दीन हो। ठीक है ना, ये हम अपनी इस्लाह के लिए वाली बात कर रहे हैं, अपनी सोच के लिए बात कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर ऑनर इन द दुनिया, वी शुड बी लुकिंग फॉर ऑनर इन आखरा एंड इन रिलीजन, इन दीन। ठीक है यूसुफ, ठीक है, तो ये रीजन है हमारी। सही है, बाकी जो चीजें हैं वो तो हमने करनी है, वो तो जरूरत है, वो तो हमने करना ही है, उसको कोई मना नहीं कर रहा, उसको अच्छे तरीके से करें, जो सही तरीका है काम करने का उस तरीके से करें। एनीवे, तो ये पिछले हफ्ते आखिरी बात हुई थी, इसी के अंदर शायद क्लास का टाइम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी काफी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है अभी। तो अब जो है ना, वो उस्मान फारूक, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के ऊपर हम वापस आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले उन्हीं की सीरत की चीजें जो है वो थोड़ी आपके सामने दोहराई के तौर पर रखनी थी कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी थी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से ऊपर लीनियज में जाकर के फिफ्थ जनरेशन में कॉमन हो जाते हैं। कुसई बिन किलाब के वो नबी अलैहिस्सलाम के भी पर दादा थे, और वो ये उस्मान गनी अतान के भी पर दादा कुसई बिन किलाब बनते हैं, तो वहां पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं। और दूसरी एक और बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन फैमिली वाइज क्या बनता है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक फूफी थी जो अब्दुल्ला, ख्वाजा अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर उनके इस्लाम लाने वाली हदीस को हम मानते हैं, तो ख्वाजा अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उनकी एक ट्विन सिस्टर थी, यानी नबी अलैहिस्सलाम की फूफी। तो वो जो थी ना, वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की नानी भी लगती है। ठीक, उनकी वालदा की वालदा भी लगती है। तो इस तरह से फैमिली कनेक्ट ऊपर जाके होती है। फिर उस्मान गनी रतान की जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट सिफत, ठीक है, जिसमें जिससे कि उनको इवन जो जुम्मे का खुतबा दिया जाता है ना, हजरत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह का बड़ा मशहूर खुतबा, अक्सर पाकिस्तान इंडिया के मसाजिद के अंदर वही वाला खुतबा जुम्मे में इमाम साहब पढ़ते हैं, तो उसमें भी हजरत उस्मान गनी रतान के जब नाम आता है तो हयाए उस्मान, ठीक है, उस्मान रजी अल्लाह की सबसे डोमिनेंट जो क्वालिटी थी, सिफत थी, उनका उनकी हया थी। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ हदीसें हमने पढ़ी थी। नबी अलैहिस्सलाम के पास दूसरे हजरत आए, आपसे सलाम वैसे ही लेटे रहे, पैर पिंडली वगैरह खुली हुई थी, लेकिन जब उस्मान रजी अल्लाह आए, नबी अलैहिस्सलाम सही होकर के बैठ गए और कवर कर लिया अपने आप को कम्प्लीटली। आयशा ने पूछा कि आपने उस्मान के आने पर ऐसा क्यों किया, फरमाया कि जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं उससे मैं क्यों ना हया करूं। ठीक है, तो हया उस्मान। अच्छा, फिर उसके बाद उस्मान की एक और बड़ी उनकी अचीवमेंट ये आती है कि उन्होंने एक हिजरत नहीं करी बल्कि दो हिजरतें करी थी। ठीक है, हिजरतें, तो हबशा की हिजरत भी करी अपनी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, और फिर मदीना तैयबा की भी हिजरत करी। और दूसरी बात क्या कि दो बेटियां नबी अलैहिस्सलाम की उस्मान रजी अल्लाह तआला के निकाह में आई, रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, और उनके इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया भी पढ़ा था, वो भी कि जब रुकैया तान का इंतकाल हो गया, तो हजरत उस्मान गनी तान, फिर उनकी और कोई दूसरी बीवी उस वक्त कोई नहीं थी, तो उमर रजरा तारान की जो बेटी थी हजरत हफ्सा रजरा तारा अनहा, तो उनके भी शोहर का इंतकाल हो गया था, तो वो भी बेवा थी, तो तो उमर अज़ान जो है उस्मान अज़ान के पास गए और कहने लगे कि मेरी बेटी जो है ना वो आपके निकाह के लिए हाजिर है, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी से निकाह कर लें। उस्मान अज़ान ने जवाब दिया कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 महीने गुजर गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो उमर अज़ान को बड़ा अजीब लगा कि भाई अगर ना करनी थी तो उसी बात ना कर देते, हाँ करनी थी तो हाँ कर लेते, उन्होंने तो लटका दिया मुझे। तो उमर अज़ान जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, ठीक है, जैसे कि नजरात का तरीका था कि जब कोई ऐसा मसला फौरन शेख के पास पहुंच जाए। तो पहुंच गए और फरमाया कि भाई ये तो देखे उस्मान ने मेरे साथ क्या किया, तो वो तो लटका के रख दिया उन्होंने, मैं किसी और से अपनी बेटी की शादी कर देता भाई इतने देर तक वेट करने के बजाय। तो नबी ने फरमाया कि उमर फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटी की शादी उससे होगी और उस्मान की शादी उससे होगी जो तुम्हारी बेटी से भी बेहतर है, ठीक है। उमर अतान तो ना एकदम चकरा गए ना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रिडल मैथमेटिकल रिडल जो है ना वो मेरे सामने रख दिया, इसका क्या मतलब है। बहरहाल तो थे तो आशिक सादिक, तो चले गए भाई, देखा जाएगा जब हकीकत सामने आएगी। तो फिर उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को बताया कि भाई अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि तुम्हारी जो शादी है वो उम्मे कुलसूम से होगी, मेरी दूसरी बेटी से होगी, ठीक है। तो उमर रज़ान फरमाते हैं कि जब मुझे पता चला तो मुझे बात क्लियर हो गई कि हाँ भाई जाहिर सी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी जो है वो मेरी बेटी से अफजल है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम ने उमर रज़ान फरमाया कि उमर तुम्हारी बेटी हफ्जा जो है ना उनसे अल्लाह ताला ने मुझे शादी करने का हुक्म फरमाया है, तो उमर रज़ान फरमाया अब मुझे दूसरी वाला मसला भी समझ में आ गया कि वाकई उस्मान से बेहतर तो नबी अलैहिस्सलाम ही हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये बात हमने पहले तो नहीं करी थी, अभी दिल में आई है तो आपके सामने ये बात रख लेते हैं कि देखें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जरा सोच को देखें, मोहब्बत को देखें और इकराम को देखें जो ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए उनके दिल में था बल्कि अपने पीर भाई उस्मान के लिए भी उनके दिल में था, ठीक है ना। क्या के मेरी बेटी, अब बाप के लिए बेटी जो होती है वो बड़ी अजीज होती है, बड़ी मोहब्बत होती है बाप को बेटी के साथ, ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बेटी वो मेरी बेटी से अफजल है, ठीक है ना। यानी मेरी बेटी मेरे लिए कितनी अहम बेशक होगी लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बेटी से ज्यादा अहम नहीं हो सकती, उनसे ज्यादा इज्जत वाली नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो हो गई नबी अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत और उनका इकराम, उनका मुकाम, ठीक है ना। तो ये तो होना होना भी चाहिए, लेकिन दूसरी बात क्या है के उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनकी क्या सोच थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि उससे शादी होगी जो उस्मान से भी बेहतर है, अब वो फिक्र में पड़ गए उस्मान से बेहतर कौन हो सकता है, राइट, उस्मान से बेहतर कौन हो सकता है। तो अब देखें अपने जैसों उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तकरीबन सेम एज ग्रुप के ही थे इनके, ये भी नहीं कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े थे तो अब सोच रहे हैं कि उस्मान से बेहतर कौन है, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए भी ऐसे जज्बात हैं कि भाई मेरा जो ये साथी है, दीनी साथी है, पीर भाई हमारे यहाँ उसको कहते हैं जिसका शेख एक हो, उनको पीर भाई कहते हैं, उनके बारे में कितना अच्छा गुमान है कि उस्मान से बेहतर कौन हो सकता है, ठीक है ना। उनको बात समझ में नहीं आ रही थी हत्ता कि उनको पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने शादी करनी है, ठीक है ना, तब बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वो मुसलमानों के जज्बात एक दूसरे के बारे में अशिद्दाउ अलल कुफार व रुहमाउ बैनहुम, कुरान मजीद में यही तो है ना, रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे के बारे में रहीम होते हैं, करीम होते हैं एक दूसरे के बारे में, और शदीद जो होते हैं ना वो कुफार के बारे में होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर शदीद नहीं होते, ठीक है। तो ये सिफात है मोमिनीन की जो कि हमें कुरान मजीद से भी पता चलती है और सहाबा की जिंदगियों से भी पता चलती है, ठीक है। बन नहीं सक रहे लेकिन अल्लाह से दुआ तो मांग सकते हैं, अल्लाह हमें भी बना दे ऐसा, मुश्किल हो रही है मुझे पता है काफी लोगों को काफी मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह बना तो सकते हैं ना, हम नहीं बन पा रहे तो ठीक है। तो और क्या थी कि अशरा मुबशरा, उसके इस वाक्य यानी इसके भी दो वाक्यात हमने पढ़े थे, दोनों कुओं से मुतालिक थे। एक में यह था कि तशरीफ ला रहे हैं और कुएं के मुंडेर पे बैठ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रतान, फिर उमर रतान, फिर उस्मान रतान और नबी सल्लल्लाहु हर एक के बारे में कह रहे हैं आने दो आने दो और उनको जन्नत की बशारत दे दो, उनको जन्नत की बशारत दो। ये भी कुएं वाला वाकया था। और दूसरा कुएं वाला वाकया क्या था जिसमें जन्नत की बशारत मिली थी के बेरे, टाइम थोड़ा सा खत्म होने वाला है, बेरे उस्मान जिसको कहते हैं कि भाई उसको खरीद करके इन्होंने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था इस वाकये के अंदर आज के एतबार से बड़ी हमारे लिए रेलेवेंस है बेरे उस्मान के वाकये के अंदर। ठीक है, वो क्या कि इसमें हमने पढ़ा था, हजरत जी की ही किताब से ही पढ़ रहे हैं, हजरत जी ने जो बातें तफसील से लिखी थी ना, तो उसमें क्या था कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर किसको चक्कर दिया था, किसको यानी अपसेट कर दिया था ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड, चीज है यहूदी को। ठीक है ना, और यहूदी जो है ना, ये पैसे से पैसा बनाना और पैसे को बढ़ाना, इसके अंदर ये जरबुल मिसल है कि इसकी मिसालें दी जाती हैं कि जितना पैसा बढ़ाना जो है वो यहूदी को आता है उतना किसी को नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला जब बसीरत अता फरमाते हैं ना ईमान वाले को, राइट, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने ऊपर तारी करता है, फिर उसको जो अल्लाह ताला इंटेलेक्ट अता फरमाते हैं, उसको जो जहानत अता फरमाते हैं, फहम अता फरमाते हैं, जिसको लुब कहा जाता है अरबी जुबान के अंदर, उसका फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्होंने यहूदी को शिकस्त दी उस मैदान में जिसमें कि यहूदी सबसे ज्यादा आगे होता है पैसा बनाने में। ठीक है, लेकिन जब हम ये सब नहीं कर रहे होते तो आज जिस तरह से यहूदी हमें नचा रहे हैं, हर तरीके से नचा रहे हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअली भी और फाइनेंशियली भी और हर तरीके से। ठीक है, अल्लाह ताला की हम फरमानबरदारी पर आ जाए ना, फिर यहूदी हमें कुछ नहीं कर सकते, फिर यहूदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कुछ कर लो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, अल्लाह ही को मनाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और समरी आइटम में से, यानी रिविजन आइटम में से, कि जब जैश उसरा गजवे तबूक का वाक़ आया, तो बड़ा सख्त वक्त था और बहुत बड़ी आर्मी से लड़ाई करनी थी, मुसलमानों की आर्मी भी अच्छी खासी बड़ी थी, 30,000 से ज्यादा, तो उनके पास खाने पीने और लड़ने उड़ने के लिए हथियार ही नहीं थे, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतना दिया कि नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए, हत्ता कि ये तक फरमा दिया कि अब इसके बाद उस्मान जो अमल करे ना, वो कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उस वक्त कहा जाता है कि जबकि इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है किसी से, जैसे कि अल्लाह ताला जब 313 मोमिनीन से खुश हुए तो गजवाए बदर के अंदर, तो फरमाया कि अब ये बदरी साहबी कुछ कर लें, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, हालांकि हकीकत ये थी कि उन्होंने कोई गंदा काम करना ही नहीं था उसके बाद, लेकिन खुश जब इंसान बहुत हो जाता है तो ऐसी बातें कर देता है, तो नबी अलैहिस्सलाम से इतने खुश हो गए थे। किसी और जगह पे पढ़ा कि पूरे की पूरे गजवे तबूक में जो मुसलमानों के एक्सपेंसेस थे उनका 1/3 जो है ना, वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जिम्मे ले लिया था, 1/3 ऑफ द होल आर्मी एंड द होल एक्सपेडिशन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बैते रिजवान का वाक़ा भी हमने पढ़ा था, जिसमें कि उस्मान रज़ान भी एक बहुत ही प्राइम कैरेक्टर थे उसके, और इसमें वो बात आई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपना एम्बेसडर बना करके भेजा, तो उस्मान गनी रज़ान को भेजा मक्का मुकरमा में, और उन्होंने वहाँ पर मुशरिकीन ने तो ऐलान कर दी, ये अफवाह फैला दी कि उस्मान को शहीद कर दिया गया रसूल अल्लाह ने। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बैत रिजवान ली सारे मुसलमानों से जो वहां मौजूद थे, कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। ठीक है, तो सब ने आपस में उनके हाथ पे बैत करी, और नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो है वो अपने हाथ के ऊपर उस्मान रतान के हाथ के तौर पर अपना दूसरा हाथ रखा। ठीक है, यानी एक हाथ को कहा ये मेरा हाथ है, दूसरा हाथ जो है उस्मान का हाथ है। ठीक है, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खुद वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन फरमाया कि मेरा दिल कहता है कि उस्मान शहीद नहीं किए गए, इस वजह से मैं इस तरह से उस्मान की भी बैत लूंगा। तो उस पर याद है फिर उसके ऊपर कुछ टेंजेंट में जाके हमने कुछ बातें करी थी। जी,
अच्छा
यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल की फिर उस कुछ नज़म वगैरह भी आपको सुनाई थी। अच्छा, उस्मान गनी रतान की दूसरी चंद और भी बहुत मेजर अचीवमेंट्स थी, उनमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो उस्मान रतान की है वो क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट उस्माने गनी अज़दान की, कुरान
पर
मजीद को दोबारा से कंपाइल करना और एक तिरत के ऊपर पूरी उम्मत को जमा करना, ठीक है, एक तिरत के ऊपर। हालांकि तिरातें तो बहुत सारी हैं, तो जो उसमें एक्सेल करता है वो सारी तिरातें सीखता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं वो तो एक ही तिरत के ऊपर तिलावत कर सकते हैं ना, और करते हैं, एक ही तिरत के ऊपर ही करने में आफियत है, आसानी है। तो पूरी उम्मत को एक तिरत के ऊपर जमा किया और फिर उसी के तहत जो है वो कॉपीज बनाई, 7 कॉपीज बना करके 7 प्रोविंसेस में उनको भेजा, ठीक है। अच्छा, ये जमा और नशे कुरान, ये उस्मान गनी अतान की सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई। और उस्मान गनी अतान की फिर उसके बाद दूसरी बड़ी अचीवमेंट क्या बनती है कि उनके दौर में जो इस्लामी हुकूमत के बॉर्डर्स थे वो मजीद फैले। तो उमर रजान के जमाने में भी बहुत ज्यादा फैले थे, लेकिन उससे भी बहुत आगे वेस्ट पे जो है वो अलजजायर तक मुस्लिम हुकूमत के बॉर्डर्स एक्सपैंड हुए, और ईस्ट की तरफ जो है वो अफगानिस्तान, सिंध तक जो है, बल्कि सिंध तो बाद में हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान तक तो कम से कम पहुंचे। तो ये एक्सपेंशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हुई उस्मान गनी अतान के जमाने में, ठीक है। अच्छा, बस इसके बाद जो है हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जिंदगी के बाकी कुछ वाकयात हैं जो कि शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले एक ओवरऑल बिग पिक्चर को आपके सामने रखना चाह रहे थे, ठीक है। तो बिग पिक्चर को इस तरह से रखना था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत थी तो उसमें कौन सी बात थी जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा वाजह नजर आती है, सबसे बड़ा वाजह काम, प्रोमिनेंट काम उन्होंने क्या किया था, ठीक है। इन्होंने पहले हाथ उठा लिया था इब्राहिम भाई। उम्मत को संभाला था, खत्म नबूवत का भी काम किया था, लेकिन अगर आप उन सबको समअप करें, ठीक है, या ऑनलाइन अगर किसी ने मैनेजिंग जिहाद जस्ट आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे, मैनेजिंग जिहाद क्या मतलब, क्या सिद्दीक अकबर अतान की सबसे प्रोमिनेंट उनकी खिलाफत की सबसे प्रोमिनेंट बात क्या थी?
जो
जी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? हाँ, प्रिजर्वेशन ऑफ द दीन, ठीक है ना, हिफाजत दीन। नबी अलैहिस्सलाम दीन को मुकम्मल करके इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ठीक है, वो अतमम तुम अलैकुम नेमती, ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब इस दीन को महफूज रखना है, जैसा नबी अलैहिस्सलाम छोड़ के गए हैं वैसा ही इसको आगे पहुंचाना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो पूरा 2 साल के खिलाफत का दौर है उसमें वो यही काम करते रहे। मैं इतनी सी भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतनी सी भी तब्दीली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, यानी ओवर माई डेड बॉडी कहते हैं ना अंग्रेजी में, अगर ये करना है ना तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर गुजर के तुम्हें तो करना पड़ेगा, यानी मैं नहीं करने दूंगा ये काम, सही। तो अब वो खत्म नबूवत की प्रिजर्वेशन थी, वो जकात के मसाइल की प्रिजर्वेशन थी, या वो किसी भी शक्ल की थी, लेकिन उनका फोकस इसी के ऊपर रहा। इसी वजह से रद्दा वॉर्स भी कहते हैं उसको अंग्रेजी के अंदर, यानी लोग मुर्तद हो गए थे, तो उन्होंने मुर्तदीन के खिलाफ जो है वो जिहाद किया, मानेईन जकात के खिलाफ जिहाद किया, और किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं करी। तो उनकी सबसे प्रॉमिनेंट चीज ये नजर आती है। अब दूसरे खलीफा साहब का भी हम पढ़ चुके हैं, तो उनका भी अगर कोई बताना चाहे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की सबसे ज्यादा प्रॉमिनेंट बात क्या नजर आती है? चले श्याम भाई, दीन को फैलाया और इंसाफ, मैनेजिंग द उमूर रियासत, वो तो सभी करते हैं, मैनेजिंग द उमूर रिसालत, फतेह बैतुल मुकद्दस। वो तो एक वाकया है ना, फतेह बैतुल मुकद्दस। तो इन्होंने जो जवाब दिया है श्याम भाई ने, कि उमर फारूक खतान के जमाने की जो सबसे प्रोमिनेंट बात नजर आती है ना, वो ये बात तो है कि दीन को फैलाया, ठीक है, फुतुहात बहुत कसरत के साथ फुतुहात शुरू हो गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में फुतुहात शुरू नहीं हुई, अगरचे कि उनकी तरफ स्टेप ले लिया था, लेकिन शुरू नहीं हुई थी वो। हजरत उमर फारूक के जमाने में शुरू भी हुई और बहुत ज्यादा कामयाबी के साथ हुई। लेकिन इसी के साथ एक इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर आपसे पूछें, इसी का दूसरा रुख फुतुहात के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है उनकी खिलाफत के बारे में। जी, तो वो तो हो गया ना, फुतुहात फैलाया। फुतुहात का मतलब होता है ओपनिंग डोर्स, भी इस शहर को ओपन किया, वहां पे दीन एस्टैब्लिश हो गए, शहर को ओपन किया वहां पे। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करी, फैलाते गए बस, आगे दौड़ते पीछे चौड़ बताते आगे आगे, जैसे कुछ बच्चे हिफ्स करते हैं ना, तो आगे आगे हिफ्स करते हैं, सबक 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 सबक, और पीछे कोई मंजिल और कोई सबक वगैरह नहीं, तो पीछे का भूलते जाते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। तो सिकंदर आजम ने तो शायद इसी किस्म की फुतुहात करी थी, आगे बढ़ता चला गया और पीछे जो है ना वो क्योस ही क्योस। तो चले अंकल्स बेच उताब खा रहे जवाब देने के लिए, चले उन अंकल से अभी तक नहीं पूछा। तो अंकल आप कुछ कह रहे थे,
गवर्नेंस दा
ये आईटी वाले हैं ना, आईटी गवर्नेंस वाले। तो गवर्नेंस निजाम स्टैब्लिश किया, ठीक है ना, कि भाई जो फुतुहात हो रही है, अब वहां पर सिस्टम भी तो स्टैब्लिश होगा ना, वहां पे इंसाफ कायम होगा, जज जो है वो काजी साहब का कंट्रोल होगा, और हुदूद वगैरह सब जो है वो एनफोर्स किया जाएगा, ठीक है, लोगों को बैतुल माल में से पैसे मिलेंगे, वजीफे मिलेंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे, दो दो साल के बच्चों को पहले वजीफा जारी किया, फिर बाद में एक वाकये के बाद फैसला किया कि नहीं, जैसे ही पैदा होगा किसी किसी का बच्चा, उसी वक्त से जो है बैतुल माल से उसको वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई। ये तो सारे सिस्टम स्टैब्लिश किए, स्टैंडिंग आर्मी वाला सिस्टम, पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, यानी फुल प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होते थे, हाँ भाई जिहाद है चलो भाई सब घर से निकलो जाकर के जिहाद करके आओ, ठीक है ना, अब जो है वो एक बाकायदा प्रॉपर आर्मी बन गई, जो कि 4 महीने तक वो बैरक्स के अंदर रहेगी, फिर उसके बाद उनको रिसाइकिल किया जाएगा, वो वापस आएंगे, नए लोग आएंगे, ठीक है, ये पहले नहीं था ये वाला सिस्टम। उमर फारूक ने ये सारे सिस्टम्स इस्टैब्लिश किए और बड़ी कामयाबी के साथ इस्टैब्लिश किए, चलते रहे ये उनकी पूरे दौरे खिलाफत के अंदर। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत आती है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना, फिर हट करके उमर अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु का भी जो काम था वो हट के एक एक यूनिकनेस थी उसके अंदर। अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक यूनिकनेस थी, और फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक और यूनिकनेस थी। आप कुछ कहना चाहते हैं?
उस्मान गनी के जमाने में
सही, सोर्ट ऑफ लाइक दैट। हाँ, इस तरह से ये बात कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में दीन की प्रिजर्वेशन हुई, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन से मुराद क्या, क्या प्रिजर्व किया, अकायद को प्रिजर्व किया, ठीक है, कि जैसे अकायद नबी अलैहिस्सलाम ने बताए वैसे ही हमने सोचना है, ठीक है, और आमाल का जो तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है एग्जैक्टली उसी तरीके को हमने फॉलो करना है, ठीक है ना, तो जिसको कि हम कोट एंड कोट दीन कहते हैं, ठीक है, इबादत भी कह देते हैं, दीन कह देते हैं, रिलीजन कह देते हैं। उमर रतान के जमाने में के इस दीन के जो फिर ह्यूमन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मुआशरा जो आप सेटअप करते हैं, ठीक है, तो उस मुआशरे को कैसे ले चलाना है आगे, ठीक है, तो अब वो तो नबी अलैहिस्सलाम बता के तो सारी बातें गए थे, कोई नई बातें उन्होंने नहीं करी थी, लेकिन उमर अतान ने फिर उसको जो एक्सपेंशन हुई तो वहां पर दीन के अकायद भी इस्टेब्लिश थे, अमाल के तरीके भी इस्टेब्लिश थे और ह्यूमन सिस्टम्स भी इस्टेब्लिश थे। ठीक है, अब उस्मान गनी रतान का जमाना आता है तो इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सपेंशन हुई और वही चीज जो उमर रतान करके गए थे वो उस्मान गनी रतान ने उसको भी कंटिन्यू किया कि नए इलाकों के अंदर सिस्टम इस्टेब्लिश करते गए करते गए करते गए करते गए। ठीक है, लेकिन अब जो है ना एक नई चीज जो है वो शुरू हुई जो कि पहले अबू बकर सिद्दीक रतान के जमाने में और उमर फारूक रजान के जमाने में नहीं हुई थी। ठीक है, वो नई चीज क्या थी?
तो दीन
दीन के अंदर क्या मतलब कि जो लोग मुसलमान थे और बड़े प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी थे, ठीक है, उनकी तरफ से इश्यूज क्रिएट होने शुरू हुए। ठीक है, जिसको कहते हैं अपनों में से इश्यूज क्रिएट होने शुरू हुए। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रज़ान के जमाने के बारे में भी आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वो अपनों में से इश्यूज क्रिएट हुए, मानी ने ज़कात बन गए और जो है वो, लेकिन वो इस किस्म के इश्यूज थे कि जो के इंसान को दीन से बाहर ले जाते हैं एकदम। ठीक है, अगर आप खत्म नबूवत का इनकार करते हैं तो यू नॉट अ मुस्लिम एनी मोर, अब आप तो खारिजी हो गए ना, तो आप एक आउटसाइडर बन गए एक तरीके से। एक तरीके से तो क्या, बल्कि आप बन गए आउटसाइडर। ठीक है, तो आउटसाइडर्स की तरफ से जो है ना वो फितने हुए जिनको के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कर्ब किया, उनको दबाया जिहाद के जरिए से। ठीक है, आप क्या कह रहे थे?
पर पॉलिटिकल
नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जिसकी वजह से एक्चुअली मेरे ध्यान में बात आई कि ये जो किराअत का जो इशू क्रिएट हुआ था तो ये तो प्योरली रिलीजियस था ना, थ्योरेट क्या कहते हैं, थ्योक्रेसी, थियोलॉजिकल इशू था, इस किस्म का था। ठीक है, लेकिन ये इशू क्रिएट करने वाले दीन से खारिज नहीं हो रहे थे, इन्होंने अकीदे का इनकार नहीं किया था, ये अंदर ही अंदर कहाँ भी ये लड़ाई हो, नहीं ये मैं सही पढ़ रहा हूँ तुम सही पढ़ रहे हो और तुम जो है वो गलत पढ़ रहे हो, इस किस्म के मसले थे उनको। तो उस्मान गनी रतानों ने जमे कुरान और नशे कुरान के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी वो रंजिशें रह गईं कि हाँ भाई वो जरा इतना खुश नहीं थे कि भाई अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का वाक्य आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आपने इतना मेजर काम किया मुझे आपने बुलाया भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इस किस्म के अंदर से थोड़े से इधर पहचे क्लास खत्म होने वाली है बस। ओ पास, अच्छा आखिरी बात ये वैसे ही है, तो एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो है ना पॉलिटिकल इश्यूज भी विद इन मुस्लिम्स जो है ना वो पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होना शुरू हुए कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, आपने ऐसे क्यों किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये यानी अब ये तफसील इंशाल्लाह हमने अगली क्लासेस के अंदर पढ़नी है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में फिर अल्लाह ताला ने, ये देखिए सहाबा का जो दौर है ना ये सारा क्या है, ये हमारे लिए मॉडल है। ठीक है, कि भाई ऐसे भी हो सकता है हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ऐसी भी हो सकती है, तो ये सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम के उस्वाए हसना ही है ना ये। ठीक है, सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलाम मिल करके ही उस्वाए हसना बनता है, पूरा का पूरा मॉडल बनता है। तो अब अल्लाह ताला ने ना हर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बन सकती थी सिचुएशंस की, तो सहाबा के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने उन सबको कवर करके हमें दिखा दिया। ठीक है, तो इनके जमाने की फिर सिचुएशन ये बनी कि जब विद इन मुस्लिम्स आपस में इख्तलाफात हो जाएं तो फिर तुमने क्या करना, कैसे इसको हैंडल करना। ठीक है, लेकिन ये मसला बजाहिर लगता है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी हुआ, विद इन मुस्लिम्स इख्तलाफात हुए, व्हाट वाज द डिफरेंस, इस पे बात खत्म करते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने, अच्छा अंकल्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट सवाल है क्योंकि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी काफी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी विद इन मुस्लिम्स इशूज हुए और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी विद इन मुस्लिम्स इशूज हुए, व्हाट इज द डिफरेंस?
अच्छा
वैसे जवाब तो ये दे चुके हैं, आप फिर भी बता दें। हाँ
जैसे जो मसलियतने वाले थे वो बाजार तरीके से वो कहते थे कि हम आपके सपोर्ट में तरीके नहीं, और जो उस्मान के टाइप के वो करना चाहते थे बाजार एक
वो भी डिटेल्स में जाए तो इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन एक मेजर फर्क जो है ना, जो बहुत बड़ा एक हाई लेवल देखें, बिग पिक्चर डिफरेंस, वो ये है कि उस्मान अली अतान के जमाने में जो फितने हुए ना, वो उस्मान अली अतान ऐसे ऊपर थे और वो सारे के सारे नीचे थे, ठीक है ना। जो इशू क्रिएट करने वाले लोग थे वो सारे के सारे नीचे के लेवल पर थे, और उस्मान अली अतान जो है वो बुजुर्ग ऊपर सीनियर मोस्ट सहाबा में से एक, ठीक है। अली रज़ा अतान के जमाने में जो फितने हुए विद इन मुस्लिम्स, वो क्या थे कि अली रज़ा तनान और वो जो थे ना जिनके साथ इख्तलाफात हुए, वो प्रेटी मच ऑन द सेम लेवल, ऑन द सेम लेवल। हजरत मुआविया रज़ा तनान है, ठीक है, और हजरत जुबैर रज़ा तनान है, और हजरत तलहा रज़ा तनान है, ठीक है ना। तो ये कोई नीचे के नहीं थे कि उस्मान अली रतान जो है वो बहुत ऊपर हैं और ये जो है वो नीचे, सब एक लाइक सारे अशर मुबशरा में से है ना, ये उस्मान, ये अली रतान, जुबैर रतान, तलहा रतान, ठीक है, और मुआविया रतान जो है वो भी बहुत बड़ा उनका मुकाम है, वो भी कोई छोटे जूनियर साहब, तो बिल्कुल ऐसे में तो नहीं आते। तो इस तरह विद इन पेयर्स जो इश्यूज होंगे वो अली रतान के जमाने में अल्लाह तआला ने दिखा दिए, और फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल जो इश्यूज होंगे वो जो है वो उस्मानी अली तआला के जमाने में अल्लाह तआला ने दिखा दिए, ठीक है। तो हमें सहाबा कराम को अपने मिशल राह और अपने इस तरह से देख करके चलना है, तो हमें फिर उनकी जिंदगियों में अपने लिए हर तरह की गाइडेंस जो है वो मिल जाएंगी। अल्लाह तआला हमें उनको सीखने, समझने और उनसे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा मेरे चश्मे लो, मेरा अपना कौन सा,
ये बात है।